ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज के इस शुभ दिन पर विशेष 11 अमृत प्रिंटिंग प्रेस में अनेक सालों से सेवा कर रहे उर्मिला दीदी हम सबके सामने उपस्थित है। राजयोगी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन, इन्होंने बहन जी एम ए इंग्लिश पास किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से और मेरिट स्टूडेंट भी हैं। 81 से ज्ञान में चल रहे हैं, 85 से समर्पित है। ज्ञानामृत यहाँ ही शांतिवन में प्रिंट होते हैं, उसका विशेष सेवा करते हैं। सह संपादिका है और एक पत्रिका है हरियाली पत्रिका त्रैमासिक का है, उसमें भी सेवा करते हैं। अनेक स्थानों पर सेवा किया है, अभियान में भी भाग लिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है और बहुत अच्छा लेखिका भी है। भगवान का देववाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनवाणी करने के लिए अनेक लेख भी उन्होंने पब्लिश किया है। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, स्वप्रबंधन, नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि विषयों पर आप वक्तव्य देती हैं। कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल कॉलेजेस में भी, अनेक प्रकार के संस्थानों में आपने प्रवचन दिया है तथा राजयोग अनुभूति करवाए हैं। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी अभी हम सबके समक्ष निश्चय बुद्धि विजयंती, इसके बारे में बाबा भी सुबह बताया और अभी बहन जी उसके बारे में अपना अनुभव का ज्ञानामृत का क्लास हम सबके समक्ष रखने वाले हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सुबह हमने मीठे बाबा की बहुत ही मीठी मीठी मुरली सुनी और अभी निश्चय बुद्धि पर ही हम कुछ और मनन चिंतन करेंगे। दुनिया में कोई भी धर्म स्थापन हुआ है तो उसमें मुख्य भूमिका निश्चय की रही है। धर्म स्थापक को अपने में निश्चय, अनुयायियों का निश्चय, उन्होंने जो टेनेट्स दिए, सिद्धांत दिए, उनमें निश्चय। जैसे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे किया, उस चुनाव का आधार भी निश्चय बना। गुरु नानक देव जी की जो युगल थी उसका नाम था सुलखनी और उनके अपने दो बेटे थे, बड़े का नाम था श्री चंद, छोटे का नाम था लक्ष्मी चंद और एक उनका भोला भाला शिष्य था उसका नाम था भाई लहाना। तो सुलखनी माता चाहती थी कि गुरु नानक देव जी अपने बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बनाएं और गुरु नानक देव जी को ये निश्चय था कि मेरे बच्चों से अधिक योग्य ये मेरा शिष्य है। तो अपनी युगल को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने एक दिन निश्चय की परीक्षा ली। पहले दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सारी पंगत को कल प्रसादा छकाया जाएगा, जिसे हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं उसको वो लोग प्रसाद, प्रसादा, भोजन छकना ये शब्द देते हैं। तो अगले दिन वो सामूहिक भोजन था, लेकिन रात को बरसात इतनी ज्यादा हुई कि सारा ईंधन भीग गया। अब अगली सुबह हुई तो भोजन बने कैसे, और भोजन करने के लिए पंगत तो आने वाली थी। तो गुरु नानक देव जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये जो पेड़ है ना, तुम इस पे चढ़ो और इसको हिलाओ, इसको हिलाओगे तो मिठाइयां नीचे गिरेंगी और वो हम आने वाले भक्तों को खिलाएंगे, क्योंकि ईंधन तो भीग गया, भोजन तो बन नहीं सकता। तो उस बच्चे को बड़ी हंसी आई कि मेरे पिताजी को क्या हो गया, कभी पेड़ से भी मिठाइयां गिरती हैं क्या। और वो वहां से चला गया। फिर दूसरे बच्चे को बुलाया, बेटा तुम जरा इस पेड़ पे चढ़ो, इसको हिलाओ, मिठाइयां गिरेंगी, अपन अपने भक्तों को वही खिलाएंगे। उसने भी बाप की तरफ देखा, माँ भी वहीं खड़ी थी उसको भी देखा, और वो भी वहां से भाग गए। अब बारी थी उनके प्रिय शिष्य की, जिसका नाम था भाई लहाना। उसको बोला कि बेटा तुम जरा इस पेड़ पे चढ़ो। तो वो पेड़ पे चढ़ने लगा और आधे में चढ़ करके फिर नीचे उतर आया। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा कि आप नीचे क्यों उतर आए। उसने कहा गुरु जी आप पेड़ के नीचे चादर तो बिछा दो, अगर मिठाइयां गिरेंगी तो उनको मिट्टी लग जाएगी, इसलिए पहले चादर बिछा दो। तब गुरु नानक देव जी ने अपनी युगल को कहा कि देखो आपने अपने दोनों बेटों को भी देखा और मेरे शिष्य को भी देखा, उनको मेरी बात पे निश्चय नहीं हुआ, लेकिन इसको मेरी बात पे कितना निश्चय है, तो मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, जिसको निश्चय है उसको बनाऊं या जिनको संशय है उनको बनाऊं। तो वो भी समझ गई और कालांतर में वही भाई लहाना गुरु अंगद देव के नाम से उस गद्दी के उत्तराधिकारी बने। तो आज सुबह की अव्यक्त मुरली में बाबा ने निश्चय की बात कही, जिनका संकल्प में और कर्म में पूरा निश्चय है उनके लिए सफलता हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार में मेहनत नहीं लगती है, वो सत्य और सहज प्राप्त होता है। सफलता तो ब्राह्मणों के गले का हार है, क्योंकि निश्चय बुद्धि आत्मा कंबाइंड है, और जो कंबाइंड है उसकी सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। अगर सफलता में परसेंटेज है तो बाबा ने कहा जरूर निश्चय में परसेंटेज। तो निश्चय बाबा ने कितनी प्रकार के बताए, चार प्रकार के। पहला निश्चय खुद में निश्चय, दूसरा बाबा में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, चौथा ब्राह्मण परिवार में निश्चय। खुद में निश्चय की निशानी क्या है, हमारे में निश्चय है, हमारा अपने आप पे फेथ है, हमारा अपने आप पर विश्वास है। जब हम बाबा के नहीं बने थे तब हमारा अपने प्रति दृष्टिकोण कैसा था, और अब जब बाबा के बन गए तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बताते हैं कि एक अरब देश का बादशाह था, उसका नाम था नशखान। तो एक दिन उसके दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने द्वारपाल को कहा कि बादशाह को जाके बोलो मैं एक दीनहीन अरब हूं और बादशाह से मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल ने अंदर सूचना भेजी, छुट्टी मिल गई। वो व्यक्ति बादशाह के सामने गया। बादशाह ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं एक शक्तिशाली अरब हूं। बादशाह ने कहा अभी अभी तो मुझे सूचना मिली कि तुम एक दीनहीन अरब हो। बोला मैं दीनहीन तो तब था जब नशखान से दूर था। बादशाह का नाम था नशखान। लेकिन जब मैं नशखान के सामने हूं तो मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो बादशाह ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसको नौकरी पे रख लिया। तो जब हम भगवान से दूर थे तो अपने आप में फेथ नहीं, अपने पे भरोसा नहीं, अपने बारे में क्या सोचते थे, मैं मूर्ख खलकामी पाप हरो देवा, अपने बारे में कैसे कैसे हम विचार रखते थे। लेकिन जब बाबा के सामने आए तो बाबा ने हमारे स्वमान जागृत कर दिए। हमारा जो मूल स्वरूप है वो हमारी आंखों के सामने प्रकट कर दिया। बाबा ने हमें बताया कि आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, परमात्मा पिता के द्वारा दिए गए स्वमानधारी महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। बाबा ने हम बच्चों को इतने स्वमान दिए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि कर्तव्य के आधार पे सबसे अधिक टाइटल्स बाबा के हैं। और उन टाइटल्स के आगे हम मास्टर लगा दें तो सारे टाइटल हमारे बन जाते हैं। वो टाइटल ही हमारी डिग्रियां हैं और उनको अगर हम मिलाएं तो बड़ी बड़ी किताबें बन सकती हैं। दुनिया में लोगों को डिग्रियां मिलती हैं लेकिन हमारे टाइटल्स के आगे, डिग्रियों के आगे वो कुछ भी नहीं है। देवताओं के भी इतने टाइटल्स नहीं जितने हमारे। गिनती कीजिए, हम अवतरित आत्मा हैं, विजयी आत्मा हैं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हैं, महादानी आत्मा हैं, विश्व कल्याणी आत्मा हैं, विश्व परिवर्तक आत्मा हैं, नजरों से निहाल करने वाली आत्मा हैं। कितने टाइटल, लेकिन इन टाइटल्स से शक्ति आत्मा को कब मिलती है? कई भाई बहन अंदर ही अंदर रटते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विजयी हूं, लेकिन फिर भी कहते हैं हार हो जाती है, फिर भी कहते हैं भय आ जाता है, फिर भी कहते हैं सफलता आ जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि तीन प्रकार का स्मरण है, तो ये तो केवल जीवा का स्मरण है। हमें केवल स्मरण नहीं करना है लेकिन उन टाइटल्स का स्वरूप बनना है, कर्म में प्रैक्टिकल उनकी अनुभूति करनी है। उस स्वरूप में टिक करके जब हम वो कर्म करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि हमारी स्थिति वैसी बन जाती है, हमारा तेज वैसा बन जाता है, हमारे भीतर वो रूहानियत प्रकट हो जाती है, आत्मा के जो मूल गुण हैं वो जागृत हो जाते हैं और वो जब कर्म में आते हैं तो सफलता मिलती है। जैसे हम चिंतन करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, अब इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान सर्वशक्तिमान है, उसके पास जितनी शक्तियां हैं वो सब मेरे पास। भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं? परिवर्तन करने की शक्ति, मोल्ड करने की शक्ति, किसी चीज को चलाने की शक्ति, रोकने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, समाने की शक्ति, कितनी शक्तियां? अष्ट शक्तियां तो किताब में केवल सैंपल के रूप में रखी गई हैं। इसके अलावा कितनी प्रकार की जीवन उपयोगी शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां। तो मैं उन सब में मास्टर, और मैं मास्टर हूं तो मैं जब बुलाऊं शक्ति हाजिर होगी। मैंने आह्वान किया, सहन शक्ति आओ, आ गई। मैंने उसको आदेश दिया मेरा ये काम सफल कराओ, तो सहन शक्ति के बल से मेरा काम सफल हो गया। तो मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पे बैठना है, उस अनुभव में उतरना है। कहते अनुभवी सबसे शक्तिशाली होता है, ज्ञानी नहीं, लेकिन ज्ञानी के साथ अनुभवी। तो जब हम उस अनुभव की सीट पे बैठ के शक्तियों को ऑर्डर देते हैं, तो हमारा काम कैसे नहीं होगा, सफलता कैसे नहीं मिलेगी, विजय कैसे नहीं होगी। इसलिए एक स्वमान रोज लो, नया स्वमान, उस पे कुछ लिखो, उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो, एकांत में बैठ के उसका अनुभव करो। जैसे बाबा ने कहा, तुम बड़े से बड़े धर्मात्मा हो। क्यों धर्मात्मा है? क्योंकि हम धर्म में टिके हुए। धर्म का मतलब क्या है? धारणा। तो पहले हम धर्म में टिकते हैं, फिर कर्म करते हैं। तो हम धर्म में टिककर कर्म करने वाले धर्मात्मा है। तो हमारे हर कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। इस नशे में हमको कर्म करना है। मैं जब कोई भी कर्म करती हूँ तो मेरा धर्म क्या है? मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं करावनहार आत्मा हूँ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं निमित्त इंद्रियों को यूज कर रही हूँ, कंट्रोलर यूजर। तो इस धर्म में टिक करके, इस स्वमान में टिक करके जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का बोझ नहीं, कर्म भी हो गया, हल्कापन भी आ गया और कर्म का कोई बंधन भी नहीं बंधा, पुण्य का खाता भी जमा हो गया। तो ये है अपने आप पर निश्चय, स्वमान में टिकना और स्वमान में टिक करके हर कर्म करना। हर घड़ी अपने से पूछना, अब मैं कौन से स्वमान में टिका हुआ? क्या मैं स्वमान में टिका हुआ हूं? स्वमान भूला हुआ तो नहीं हूं? स्वमान ही हमारी शक्ति है। दूसरा निश्चय है बाप पर निश्चय। बाबा ने कहा, बाप पर निश्चय का आधार है मैं बाबा का, बाबा मेरा। क्योंकि आपने बाप को अपना बनाया, आपका बाप पर अधिकार है और ये अधिकार ही आपका बल है। भगवान मेरा है, बाबा मेरा है, केवल बाबा नहीं लेकिन मेरा बाबा। जब निश्चय से मेरा बाबा कहते हो तो सफलता और विजय दौड़ के आपके पास आ जाती है। तो क्या भगवान पर हमने हक रखा है? भगवान पर हक रखना मतलब बाकी सब हक छोड़ देना। तो भगवान के ऊपर हक है, पर संसार की किसी भी चीज पर हमारा हक नहीं। जैसे पिछले दिनों एक घटना सुनने में आई कि एक महिला एक महात्मा जी के सामने गई, और जैसे महात्माओं के सामने जाते हैं हम तो हाथ जोड़ते हैं, घुटने भी टिका देते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ के घुटने टिका के वो नमस्कार कर रही थी। इतनी देर में उसका जो छोटा बच्चा उसके पास बैठा था, उसने जब देखा कि माँ ऐसी झुकी हुई है तो वो उछल के पीठ पे बैठ गया। तो महात्मा जी ने कहा, देखो इसको कहते हैं हक। अब बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है कि माँ क्या कर रही है, उसको बस इतना पता है कि ये मेरी माँ है और मेरा अपनी माँ पे हक है। मैं जब चाहूं माँ की गोद में बैठ जाऊं, माँ की पीठ पे बैठ जाऊं। तो वो पीठ पे बैठ गया। उसके बाद महिला हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके जब उठी तो उसने बच्चे को बहुत ही प्यार से संभाला कि कहीं वो पीछे की तरफ गिर ना जाए। तो महात्मा जी ने फिर कहा कि देखो भगवान के ऊपर भी जब हम हक रखते हैं तो वो भी हमें इतने ही प्यार से संभालता है जैसे इस महिला ने अपने बच्चे को संभाला है। जैसे मान लो कोई राजा है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग में बैठा है, बहुत सारे और राजा भी उसके साथ बैठे हैं। अब राजा को कोई सूचना देनी है तो अगर कोई सूचना देने वाला सेवक होगा ना, तो वो अंदर जाने में बहुत हिचकिचाएगा, दरवाजे के आगे इधर घूमेगा उधर घूमेगा, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, बड़ी गंभीर मीटिंग हो रही है। लेकिन राजा का अगर बच्चा होगा तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा और सीधा जाकर के उस गंभीर मीटिंग में भी राजा की गोद में बैठ जाएगा। ये होता है हक। तो क्या मैंने भगवान के ऊपर इतना हक रखा है कि मैं जब चाहूं उसकी गोद में बैठ जाऊं, जो बात आए उसको सुना दूं, जिस बात का समाधान चाहूं हक रख करके उससे समाधान ले लूं? बाबा ने कहा, कई बच्चे चतुराई से रूरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा आप पर निश्चय तो 100% क्या, लेकिन 500% पर हलचल भी है। जब इतना निश्चय है तो हलचल क्यों है? फिर बाबा को रिझाने के लिए, बाबा को मनाने के लिए कहते हैं बाबा आप मेरे हो ना, और मैं जो भी हूं जैसा भी हूं आपका हूं। तो बाप भी कहते हैं बच्चे आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं क्या आपने वैसा जाना है? क्या हमने भगवान को जो है जैसा है वैसा जाना है? उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसकी हमारे प्रति भावनाएं क्या हैं, क्या हमने उन सब को समझा है? क्या हमने भगवान के दिल को जाना है? हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया, तो क्या हमने भगवान के दिल को भी जान लिया? भगवान के दिल में क्या है? भगवान के दिल को जाना क्या? किसने जाना भगवान के दिल को? एक आंख खड़ा हुआ बस। भगवान के दिल में क्या है? जो मुरली है वो भगवान का दिल ही तो है। जैसे हम किसी को बहुत आंतरिक बात सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, देखो भाई मैंने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया, अब आप जो मर्जी करो। तो भगवान रोज अपना दिल खोल के हमारे सामने रख देते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा आपसे कितना प्यार है। जैसे आज बाबा ने कहा अक्षोहिणी बार याद प्यार और नमस्ते, तो उसके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है हमें कैसे पता पड़े? मुरली से ही तो पता पड़ता है ना। तो मुरली भगवान का दिल है, तो क्या मैं उस दिल का रिगार्ड रखता हूं? मुरली में जो कुछ है मैं उसको स्वीकार करता हूं, धारण करता हूं, मानता हूं, मान करके चलता हूं? बाबा ने कहा बच्चे भोलेपन से रूरिहान करते हैं, भोले बेशक बनो, लेकिन कर्म में भोले मत बनो। जो बच्चे कर्म में भोले बन जाते हैं वो खुद भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। मन वाणी कर्म को उसी अनुसार चलाओ जैसे बाबा ने कहा है, दिन भर की दिनचर्या में श्रीमत की पटरी पर चलो, तो ना खुद धोखा खाओगे और ना किसी और को धोखा दोगे। तो भगवान में निश्चय का मतलब क्या हुआ? मैं बाबा का जो कुछ है वो मेरा, लेकिन मेरा जो भी कुछ है वो भी बाबा का। ऐसा समर्पण भाव, ऐसी बेहद की वैराग्य व्रति, ऐसी अनासक्त भावना, तब हम कहेंगे कि हमारा भगवान में पूर्ण निश्चय है। जैसे वो बताते हैं कि एक राजा ने अनाउंसमेंट की कि मेरे महल में मैं चीजों की प्रदर्शनी लगा रहा हूं और जिसको जो चीज चाहिए वो ले जाए। तो वहां राजा भी बैठा था, कोई व्यक्ति कोई चीज आता था उसको हाथ लगाता था, उसको दे दी जाती थी। अंत में एक बुढ़िया आई, उसने जाके राजा को ही हाथ लगा दिया कि मुझे तो आप चाहिए, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा देखो सबसे ज्यादा समझदार तो ये बुढ़िया निकली, इसने मुझे ही मांग लिया, और जब मुझे मांग लिया तो मेरा जो भी कुछ है वो सब कुछ इसका हो ही गया। तो ये है निश्चय, भगवान मेरा है और भगवान के जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान है वो सब कुछ मेरा है और इसके अलावा किसी चीज पर मेरा हक नहीं है। अगला निश्चय है ड्रामा पर निश्चय। बाबा ने कहा ड्रामा में सफलता भी है और ड्रामा में परीक्षाएं भी हैं, ड्रामा में परिस्थितियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं, माया की परीक्षाएं भी हैं, दोनों चीजें। लेकिन जो निश्चय बुद्धि विजयंती है उसकी निशानी क्या है? वो चुनौती को नहीं देखता, समाधान को देखता है, समस्या का चिंतन नहीं करता। समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या है, क्या करूं, ऐसी समस्या मेरे ही सामने क्यों आती है, ये है समस्या का चिंतन। और जब कोई समस्या का चिंतन करता है तो समस्या को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से उसकी तो शक्ति बढ़ जाती है, वो और विस्तृत हो जाती है, और बड़ी हो जाती है। उसको नशा चढ़ता है कि देखो मैं कितनी महान हूं, इस व्यक्ति ने दिन रात खाना पीना सब कुछ छोड़ करके मुझे ही अपने सिर आंखों पे बिठा रखा है। तो समस्या बलवती हो जाती है। जब हम समस्या को नहीं देखते लेकिन हम फोकस करते हैं समाधान के ऊपर, समाधान क्या है, समाधान का चिंतन करते हैं तो समस्या छोटी हो जाती है और समाधान सामने आ जाता है। आप जैसा चिंतन करेंगे वैसी चीज आपके सामने आएगी। कहते दुनिया में आज तक एक भी ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, आज तक एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन हमें ये देखना है कि हम चिंतन किसका कर रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे ही आप ब्राह्मण बने आपने माया को चैलेंज किया, तुम आओ और हम तुमको जीत के दिखाएंगे। तो माया ने भी चैलेंज को स्वीकार कर लिया, आपने इतना बड़ा चैलेंज दिया तो वो भी बड़ा बलवान रूप धारण करके सामने आती, आएगी जरूर। माया आएगी नहीं ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा। जब तक आप इस शरीर में हैं माया लास्ट तक अपना दांव चलाएगी, माया आए लेकिन हार ना खिलाए, आए नमस्कार करके लौट जाए, आए आपको कोई ना कोई पाठ सिखा करके लौट जाए। माया से, परीक्षा से, परिस्थिति से, चुनौती से हमें सीखना है, पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ करके अगली क्लास में चले जाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने तो बहुत छोटी छोटी बातें आती हैं, बाबा के सामने आई। हम सब ने मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी है, दादियों से सुनी है, किताबों में पढ़ी है। बाबा के सामने ऐसी तो शुरुआती दौर से ही बहुत चुनौतियां आई, सिंध हैदराबाद में आई, कराची में आई, और उसके बाद जब माउंट आबू में आई तब भी आई। चुनौतियों का रूप अलग अलग था, कभी व्यक्ति के रूप में आई, कभी साधन के अभाव के रूप में आई। जैसे माउंट आबू में आए तो सबसे बड़ी चुनौती आई कि 350 बच्चे हैं और भंडारी में 25 पैसे भी नहीं, घर में आटा भी नहीं, 1 बजे भोजन का बेल बजना है, 11 बजे तक आटा भी घर में नहीं। अब कोई साधारण व्यक्ति होता तो सोचता क्या होगा, कैसी होगा, पता नहीं क्या होगा, बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। व्यर्थ सोचने की मार्जिन होते हुए भी बाबा निश्चिंत रहे, निश्चित भावी को जान करके अटल अडोल रहे। क्योंकि निश्चय वाले की निशानी है वो निश्चिंत होगा, क्यों क्या कैसी ऐसी वैसी ये संकल्प उसके मन में नहीं आएंगे, निश्चिंतता होगी। तो बाबा भी बिल्कुल निश्चिंत रहे, बाबा के मन में क्या संकल्प था, बिल्कुल भोले छोटे बच्चे की तरह बाबा शिव बाबा के आगे समर्पित। बाबा ने कहा बच्चे बाबा के, यज्ञ बाबा का, बाबा जाने बाबा का काम जाने। और बाबा को तो सारी दुनिया भूख लगाती है, भगवान कभी भूखा रहता है क्या, भगत भी कितना भूख लगाती, तो कभी ऐसा होता है कि बाप खुद खा ले और बच्चों को ना खिलाए। तो बाबा ने कहा जब उसको इतना भूख लगता है और जब वो भूख स्वीकार करेगा तो क्या अपने बच्चों को भूखा रखेगा, हम तो डायरेक्ट बच्चे। तो बाबा बिल्कुल निश्चिंत थे और पैसा भी आ गया, आटा भी आ गया, भोजन भी बन गया, 1 बजे बेल भी बज गई और बच्चों ने बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार किया। तो बाबा ने कहा क्यों क्या में नहीं जाओ, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो लेकिन अपने निश्चय को हिलाओ मत। जैसे आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या करता है, कई पेड़ उखड़ते नहीं है पर हिल जाते हैं। कई बच्चे परीक्षाओं के तूफान में ज्ञान से उखड़ते तो नहीं है पर हिल जाते, ड्रामा ड्रामा भी करते रहते हैं और हिलते भी रहते हैं अच्छे से। जैसे एक बार एक महिला बहुत बांधेली थी और उसने बहुत परिस्थितियां पार की थी, पवित्रता पे पेपर पार किया, फिर धन नहीं देते थे घर वाले वो भी पेपर पार किया, कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, मधुबन नहीं आने देते थे, वो सारे पेपर पार कर ली। एक बार क्या हुआ कि वो अपने पीहर घर में गई और वहां गई तो उसके पिताजी की डेथ हो गई, पिताजी भी 65 साल के थे, कोई छोटी आयु नहीं थी। उसकी माँ मधुबन होके आई थी तो गांव के किसी व्यक्ति ने कह दिया, गांव के लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, कह दिया कि इसकी माँ माउंट आबू गई ना तो इसके पिताजी को नाराजगी थी और उस नाराजगी के कारण उसका शरीर छूट गया। तो इस बहन ने फोन किया, कहती है देखो गांव के लोग क्या क्या बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं फिर भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। एक तरफ तो कही जा रही है कि दीदी ड्रामा में जो है वो होगा, और फिर रोए भी जा रही है कि गांव के लोग ऐसे बोल रही ऐसी बोल रही, तो ड्रामा ड्रामा भी कर रही है और अच्छी तरह से हिल भी रही है। तो ड्रामा केवल ज्ञान के रूप में तो याद है लेकिन ड्रामा की पॉइंट एक शस्त्र के रूप में जीवन में यूज नहीं की, क्योंकि जो शस्त्र होता है वो शत्रु को हरा देता है लेकिन शस्त्र तो उसको बनाया ही, बस केवल समझ लिया कि ड्रामा है और जब बात आई तो मुख से ड्रामा ड्रामा की रट भी है पर साथ में आंसू भी है। तो ऐसे नहीं, ड्रामा मतलब बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कल्प पहले भी विजयी बने थे अब भी विजयी हैं, कल्प कल्प विजयी बनते रहेंगे, कुछ नया थोड़े करना है, नया करना हो तो सोचना पड़ता है, नया करना हो तो थोड़ा भय लगता है पता नहीं नया काम है होगा कि नहीं होगा कैसे होगा, लेकिन अनेक बार रिपीट किया हुआ अनुभवी हैं हम, तो उस अनुभव को याद करो और निश्चिंत हो जाओ। परिस्थितियां जीवन भर आएंगी, यादगार शास्त्र रामायण में दिखाया है कि जब अंगद रावण के दरबार में गया तो उसको बैठने की सीट ही नहीं दी गई। अब सब अच्छे अच्छे सिंहासन पे बैठे और ये खड़ा है पर इसने फील नहीं किया, इसने तुरंत समाधान सोचा मैं क्या करूं, और समाधान सामने आ गया, इसने अपनी पूंछ को लपेटा लगाया और इतना ऊंचा सिंहासन बना लिया और उस पे बैठ गया। अब बाकी सबके सिंहासन नीचे हो गए, अब जब वो इससे बात कर रहे हैं ना तो ऐसे देखना पड़ता है। तो फोकस कहां किया, समस्या पे नहीं, मेरा तो अपमान हो गया, मुझे तो बैठने की जगह नहीं मिली, मैं तो खड़ा खड़ा थक गया, ऐसे नहीं। समाधान सोचो, एक व्यक्ति एक शहर में गया, बड़े शहर में, और पीछे से उसकी दुकान को और उसके मकान को आग लग गई। इतनी भयंकर आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, बंद थे, कोई देखने वाला संभालने वाला था ही नहीं, तो दोनों चीजें जल करके राख हो गई। जब वो वापस लौटा तो मकान की जगह राख का ढेर देखा। आसपास के लोग उसको देख करके आने लगे, सहानुभूति जताने लगे, अरे भाई तेरे साथ तो बहुत बुरा हो, तेरा तो सब कुछ जल गया, अब तू क्या करेगा। कोई कहता है चल आज खाना हमारे यहाँ खा लेना, कोई कहता है चल आज हमारे यहाँ सो लेना। इस व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि लोग ऐसे मुझे कमजोर समझें, सहानुभूति जताएं और मैं सबकी पिटी का पात्र बन जाऊं, दया का पात्र बन जाऊं। तो इसने क्या किया, ये एक पेंटर के पास गया और एक बोर्ड बनवाया बहुत सुंदर। उस बोर्ड के ऊपर इसने लिखवाया कि घर जल गया, होम इज बर्नट, दुकान जल गई, शॉप इज बर्नट, पर विश्वास नहीं जला, फेथ इज नॉट बर्नट। और फेथ नहीं जला तो मैं फिर से दुकान भी खड़ी कर लूंगा और मकान भी खड़ा कर लूंगा। और इस व्यक्ति ने फिर से सचमुच दोनों चीजें खड़ी कर ली, क्योंकि परिस्थिति या कोई भी बात आती है ना, वो हमारे जीवन की जो टोटल शक्तियां हैं उनमें से कहीं 1 या 2% नुकसान करती है, लेकिन जीवन की जो मूल शक्ति है वो तो हमारा मन। अगर हम किसी बात को देख करके अपने मन को बिगाड़ लेते हैं तो ये हमारा 100% नुकसान हो जाता है। लेकिन कोई चीज बिगड़ी, कोई नुकसान हुआ, कोई बात बिगड़ी, लेकिन मेरा मन स्वस्थ है, संतुलित है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, फेथ से भरा हुआ है, निश्चय बुद्धि है, तो बीज ठीक है तो पेड़ सुरक्षित रहेगा। इसलिए कोई भी घटना घटे, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो, संबंध की हो, प्रकृति की हो, मन के ऊपर उसका असर मत आने दो, मन को बचा के रखो, क्योंकि मन शक्तिशाली है तो हम उस अभाव की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन हमने मन को ही उसमें कमजोर कर लिया तो अभाव की पूर्ति कैसी होगी। जब 2001 में ही भूकंप आया था ना, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो वहां के लोगों की सेवा करने का हमको भी सौभाग्य मिला था। एक जगह हम गए तो बहुत सारे लोग टेंट में रह रहे थे, तो हम एक परिवार से मिले, उस परिवार का जो यंग लड़का था, नौजवान था, उसकी भूकंप में डेथ हो गई थी। उसकी युगल थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे और एक उसका बूढ़ा पिता था। तो हम उनके साथ बैठे, थोड़ा ज्ञान सुनाया और फिर हमने कहा आप भी अपना कुछ अनुभव सुनाइए। तो उस बुजुर्ग पिता ने बोला, बहन जी हम यहां टेंट में बहुत खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, और रही बात हमारे धन दौलत मकान प्रॉपर्टी की, तो हम तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, समुद्र की एक झाल आती है हमारा सब कुछ ले जाती है और अगली झाल आती है हमें सब कुछ वापस दे जाती है। अगले साल आप आना, और आप देखना, हम पहले जैसे समृद्ध थे वैसे ही हम अगले साल आपको फिर मिलेंगे, हम फिर खड़े हो जाएंगे। और आप सबको पता है कि एक साल के अंदर अंदर उन सब स्थानों का किस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, किस तरह से उन लोगों का फिर से नए तरीके से निवास हुआ। तो बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमको अनअफेक्टेड रहना है, अपने निश्चय में अचल अडोल रहना है। और लास्ट निश्चय कौन सा है? परिवार पर निश्चय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा परिवार कोई छोटा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। और हमको नशा भी है कि हम इतने बड़े परिवार के भांति, जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, आप अपना एड्रेस दो, तो हम कहते हैं भाई कोई एक घर हो तो बताएं, हमें तो अपना एड्रेस बताने के लिए एड्रेस बुक रखनी पड़ती है, इतने एड्रेस याद थोड़े रहते हैं। दिल्ली में जाएं तो हमारा घर, कर्नाटक में जाएं तो हमारा घर, महाराष्ट्र में जाएं तो हमारा घर, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो हमारा घर हमारा परिवार है। और कहीं भी कोई बैज वाला भाई बहन दिख जाए तो नशा कितना चढ़ता है, ये बैज वाला है, ये हमारा भाई है, किसी अनजान जगह में, परदेश में, किसी संगठन में, कहीं भाषण करने जाएं, स्कूल में भाषण करने गए, वहां एक टीचर बैठा था बैज वाला, अब तो नशा चढ़ गया कि बैज वाला टीचर है यहाँ, मतलब ये स्कूल हमारा ही, तो कितना नशा चढ़ता है। तो बाबा ने कहा आपको गर्व भी बहुत है, ब्रह्मा का परिवार बहुत श्रेष्ठ है और बहुत विशाल है। जैसे कई बार आप समाचार सुनते हो, कई लोग कहते हैं जी हमारी ना 5 पीढ़ियों से डॉक्टर ही डॉक्टर है हमारे परिवार में, अब तक 25 डॉक्टर है। कोई कहता है जी हमारे परिवार में सारे फौजी फौजी, मतलब आर्मी में काम करने वाले, 50 फौजी हमारे परिवार से देश सेवा में कई पीढ़ियों से लगे हैं। तो हमारे परिवार में सबको वरदानी है, महादानी है, त्यागी है, तपस्वी है, परम पवित्र है, निस्वार्थ है, सदा दाता है। हमें भी नशा एक नहीं, दो नहीं, कई लाख। तो परिवार के साथ प्रीत की रीत निभाना, ये है निश्चय बुद्धि बनना। ऐसे नहीं कि मैं और मेरा बाबा, बस मैं बाबा के साथ ठीक हूं, परिवार से क्या लेना देना। देखने में आता है परिवार भी बहुत मदद करता है, बहुत शक्तिशाली बनाता है। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बाबा की मुरली से तो हमें बल मिलता है, लेकिन परिवार के कितने भाई बहन हमें कितना कुछ सिखाते हैं। उन दिनों को याद कीजिए, एक एक की सिखाई हुई बात याद कीजिए। आज तक भी हमने गांठ बांध रखी है, अमुक ने हमें ये सिखाया, अमुक ने हमें ये सिखाया, अमुक ने हमें ये सिखाया। अगर वो बात ना सिखाता तो हमारी इतनी उन्नति ना होती। तो परिवार बहुत कुछ सिखाता है, सपोर्ट भी करता है। कईयों को आर्थिक नुकसान हो जाता है तो परिवार खड़ा मिलता है, कई बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में कौन जाता है मिलने के लिए, दवाई के लिए, फल के लिए परिवार हमें खड़ा मिलता है। और कभी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है तो भी यही परिवार आकर के हमें संभाल लेता है। तो परिवार की हमें बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा बस एक बात का ध्यान रखना कि परिवार में वैरायटी है, ड्रामा है, सबका पार्ट अलग अलग है, सब नंबरवार हैं, सबके पद भी अलग अलग हैं। और आज तो बाबा ने माला का रहस्य बता दिया, 108 की माला क्यों बनी, 16,000 की माला क्यों बनी, पहले मणके में और आखिरी मणके में क्या अंतर है। लेकिन अंतर बेशक हो, एक भी मणका निकल जाए तो माला की शोभा ही शोभा नहीं रहेगी। अंतर है पर हर मणके की उपस्थिति अनिवार्य है। तो दोनों बातों को समझना है, अंतर को भी समझना है और उनकी इम्पोर्टेंस को भी समझना है। जैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन में चुटकी भर नमक डालो, थोड़ी मिर्ची डालो, थोड़ा ये मसाला डालो, थोड़ी खटाई डालो। अगर एक चीज भी ना डालो तो टेस्ट वैसा नहीं रहता। तो हम सब इस ब्राह्मण परिवार की ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट, कोई फूल का काम करता है, कोई पत्ते का काम करता है, कोई डाली का काम करता है, कोई जड़ का काम करता है, हम सबको मिलाकर के वैरायटी वृक्ष तैयार हुआ है। तो बाबा ने कहा परिवार में कभी ये मत कहो कि कैसे होगा, कैसे करूं, कैसे शब्द को ऐसे में बदलो। ये 21 जन्म का साथ है और 21 जन्म के बाद भी द्वापर में भी भिन्न नाम रूप से आपस में मिलेंगे, कलयुग के अंत तक भी मिलेंगे। अब भी आप देखते हो किसी परिवार में 6 हैं तो 6 के 6 ही ज्ञान में, तो देखो पूरा कल्प वो कैसे साथ रहे हैं। तो कईयों के साथ तो हमें 84 जन्म भी साथ रहना है, इसलिए सबके गुण देखना है, सबके गुणों की माला अपने गले में डालनी है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आप लोग भक्ति में क्या करते हो, मंदिर के जो देवता होते हैं उनका कीर्तन गाते हो, तो जो अभी सब बैठे हैं ये वही वाले मंदिर के देवता तो हैं, तो मन ही मन इनकी भी कीर्ति गाओ। फिर क्या करते हो, मंदिर के देवताओं को भोग लगाते हो, तो ये भी तो सभी चेतन देवता हैं, अपने गुण और शक्तियों का इनको भोग लगाओ। फिर उनको धूप अगरबत्ती से खुशबू देते हो तो उनके गुण ग्रहण करो और अपने गुणों का दान करो। ये है खुशबू उनकी लो और अपनी खुशबू फैलाओ। तो बाबा ने कहा इतना प्यारा परिवार कहाँ मिलेगा, एक एक ब्राह्मण चेतन शालिग्राम का मंदिर है, चेतन देवी देवताओं का मंदिर है, हर एक को हमें उसी दृष्टि से देखना है। परिवार से निभाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, परिवार में एक दो को आपस में जोड़ने का धागा है फेथ, विश्वास। किसी समय के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, वातावरण के अनुसार अगर किसी ने कुछ गलत भी किया तो भी उसकी गलती को भुला करके उसमें फेथ रखना है, उसको अपना मानना है, उसको माफ करना है, रहम दिल बन करके उसको साथ लेकर के चलने में ही कल्याण। दूसरा सूत्र है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें पता है हमने गलती की, लेकिन हम उसको फैलाते नहीं, उसको छिपाते। इसी तरह से अगर दूसरे से कोई गलती हो गई तो उसको फैलाना नहीं, उसको समाना है, सुधारने में योगदान देना है, शुभ भावना रखनी है। जिसकी बात को हम फैलाएंगे अगर वो हमारा मित्र होगा तो भी शत्रु बन जाएगा, और जिसकी बात को हम समा लेंगे अगर वो शत्रु होगा तो भी मित्र बन जाएगा। इतनी ताकत है समाने की शक्ति में। और फिर खुशबू वाली चीज को फैलाया जाता है, अगर बदबू वाली चीज है तो उसे तो डब्बे में डाल के ढक्कन बंद कर दिया जाता है। तो गुणों की खुशबू तो फैलाओ, लेकिन अगर कोई बात थोड़ी भी ऊपर नीचे है तो उसे समाओ और सुधारो। फिर तीसरा सूत्र है, किसी को भी पास्ट की दृष्टि से मत देखो, एक साल पहले इसने ये गलत काम किया था, ये अभी वही करता होगा, ये है पुरानी दृष्टि। बाबा ने कहा हर पल अपनी दृष्टि का रिन्यूअल करो। व्यक्ति तो रात रात में बदल सकता है, एक मिनट में, एक सेकंड में बदल सकता है, और आप उसी पुरानी दृष्टि को लिए उसी दृष्टिकोण से उसको देख रहे हो। इसलिए हर घड़ी विश्वास रखो कि ये व्यक्ति बदल चुका है और ये व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन चुका है। चौथा सूत्र है, जैसे हम सिद्धियों का आह्वान करते हैं तो बाबा ने कहा जब आप एकमत हो जाते हो, एक सूत्र में बंध जाते हो, एक संकल्प से एक रस स्थिति में टिक जाते हो, तो जितनी भी सिद्धियां हैं वो आपके पास आने के लिए लालायित हो जाती हैं। आपको उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपके पास दौड़ी आती हैं। तो जितने हम एकमत बनते जाते हैं उतनी ही सिद्धियां हमारे पास आती हैं। अगला सूत्र है, जैसे किसी परिवार में कोई कभी कमजोरी हो तो वो अपने परिवार की बात को बाहर नहीं सुनाता कभी भी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बहू बेटी, बहू पियर से नहीं आई, बेटी ससुराल में नहीं गई, आप कहेंगे कि भाई ये बेटी इतने दिन से यहाँ क्यों बैठी है, तो कहेगा ये तो पढ़ाई पढ़ रही है, ये तो पेपर देने के लिए रही हुई है, कोई बात ऊपर नीचे होगी तो बताएगा नहीं, क्योंकि परिवार की बात को बाहर देने से परिवार कमजोर हो जाता है, नुकसान होता है। तो ये इतना बड़ा जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, इसमें अगर हमें कोई छोटी मोटी बात सुनने को मिल भी जाती है तो हमें क्या करना है, उसकी चर्चा नहीं करनी है, किसी को सुनाना नहीं है। हमारा काम क्या है, बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, बात को सुनो लेकिन समुद्र की तरह से उस बात को अपने अंदर संभालो, चर्चा नहीं करो, वातावरण नहीं बनाओ, वाइब्रेशन नहीं फैलाओ। अगला सूत्र है, मान लीजिए मेरी कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन लोक संग्रह अर्थ मुझे मानना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है, तो बाबा ने कहा अपने आप को बदल लो। गलती होकर के, गलती करके तो सभी गलती मान लेते हैं, लेकिन गलती नहीं कि फिर भी लोक संग्रह अर्थ आपने मान लिया तो आपके नंबर बन जाएंगे। कोई व्यक्ति भले आपको कहे कि देखो ये गलत है, लेकिन भगवान की नजरों में आप गलत नहीं हो, तो आपको काम किससे है, बाबा से है कि मनुष्यों से। तो लोक संग्रह का ध्यान रख करके हमें अपने आप को मोल्ड कर लेना है। परिवार में रहते अगर हम इन सूत्रों का पालन करेंगे तो अवश्य ही हमारा संगठन ऐसा मजबूत हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देख सकेगी। और इसमें हम सबका योगदान है, जैसे के लिए कि एक ईंट भी कमजोर हो तो सारे के लिए के कमजोर होने की मार्जिन है। इसलिए हम ये ना सोचें कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा इस संगठन में क्या महत्व है। महत्व है, एक एक ईंट का महत्व है, एक एक कण का महत्व है, तो मैं बहुत महत्वशाली हूँ और मुझे इस किले को मजबूती प्रदान करनी है, मुझे परिवार के बीच में रहना है और परिवार का शुभचिंतक होकर के रहना है। ओम शांति।
उसके प्यार में।